नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद ने विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने पारदर्शी और व्यवहारिक ढंग से बजट तैयार किया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग विधेयक को लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही विनियोग विधेयक को अपनी मंजूरी दे चुकी है। ये विधेयक वित्त वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करता है। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि केंद्र आर्थिक स्थिरीकरण कोष के लिए लगभग 57,382 करोड़ रुपए दे रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश में वोट बैंक की राजनीति के बजाय प्रदर्शन आधारित राजनीति की शुरुआत की है। लोकसभा में रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में रेलवे में बड़े बदलाव किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे की वित्त स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ अभी जो भी प्रयास हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में बहुत सुधरी है। रेलवे का बहुत बड़ा फोकस है सेफ्टी पे, पैसेंजर एमिनिटीज पे और पैसेंजर्स के लिए जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने भारत की ओर से संयुक्त अरब अमीरात पर हुए सभी हमलों की कड़ी निंदा दोहराई। श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमति व्यक्त की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस हॉर्मूज जल डमरू मध्य को सुरक्षित बनाने में सहायता के लिए तैयार है, लेकिन यह अभियान मध्य पूर्व के मौजूदा युद्ध से अलग होना चाहिए। एलिसी पैलेस में सुरक्षा बैठक से पहले राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि किसी भी अभियान के लिए ईरान के साथ बातचीत और संघर्ष में कमी लाना आवश्यक होगा। साथ ही यह अभियान मौजूदा सैन्य अभियानों और बमबारी से पूरी तरह अलग होना चाहिए। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ गया है। इसराइली सैन्य अधिकारियों ने ईरान की कमान संरचना पर बड़ा हमला करने का दावा किया। इसराइली रक्षा बलों का कहना है कि उसके एक हमले में सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी और बासिज अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ कमांडर भी मारे गए हैं। असम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे त्यागपत्र में बोरदोलोई ने पार्टी के सभी पदों, विशेषाधिकारों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की। श्री बोरदोलोई नागांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। तृणमूल कांग्रेस ने दार्जिलिंग की तीनों सीटें अपने सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के लिए छोड़ दी हैं। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। भाजपा ने यहां से विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र विधान परिषद ने महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 बहुमत से पारित कर दिया। विधानसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसमें धोखाधड़ी, लालच, विवाह या जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन को आश्वस्त किया कि इसका उद्देश्य किसी विशेष धर्म को निशाना बनाना नहीं है। भारत जनजाति महोत्सव 2026 आज से राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हो रहा है। इस महोत्सव में आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और उद्यमशीलता का प्रदर्शन होगा। इसका आयोजन भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा सुंदर नर्सरी में किया जा रहा है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जोएल ओराम इसका उद्घाटन करेंगे। ये महोत्सव 30 मार्च तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।